اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گمنام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے، دنیا بنائی کیوں، مقصد بتا، تو نے دنیا بنائی کیوں، مقصد بتا، روحیں اس میں بسائی کیوں، مطلب جتا، روحیں اس میں بسائی کیوں، مطلب جتا، تیرے جلبوں سے روشن زمین آسمان، کیوں کسی کو نظر تو نہ آتا یہاں، تیری پردہ نشینی کا انجام ہے، ڈھونڈتا آج بھی تجھ کو انسان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، دھرم مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، سب کے بھگوان اپنے ہی اپنے جہاں، نہ سمجھ تجھ کو سمجھے نہ لڑتے یہاں، تو سمجھدار ہو کے بھی انجان ہے، ہے بدی کرتے انسان تو بدنام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، تو نے جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، کھیل کیسا گجب تھا گزب ڈھا دیا، نیکیوں کو بدی سے ملا جو دیا، لینا کب تک تمہیں سب کا امتحان ہے، اب سبھی کے دلوں میں ارمان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا کام ہے، کیا نام ہے، ہاں کیا کام ہے، اے خدا، 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 اے خدا،
ओम शांति। गुड मॉर्निंग, आज सभी का आज के इस दूसरे सत्र में स्वागत है। तो हमारे बीच में पधारी है आदरणीय विधात्री बहन जी, तो मैं इनका भी पूरे प्रेम और आदर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जब आत्मा को परमात्मा का साथ मिल जाता है तो जीवन का हर एक कदम आसान हो जाता है। तो इस सृष्टि में सबसे महान शक्ति है परमपिता परमात्मा की शक्ति। जिस परमात्मा को जानने की चाह हर आत्मा के मन में रहती है, तो उस परमात्मा का दिव्य परिचय कराने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी विधात्री सिस्टर। तो आप एक रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर है, आप डायनामिक कॉर्पोरेट ट्रेडर भी है, आपने NIT सूरत से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और इसके बाद IBM इंडिया में कंसल्टेंट के रूप में कार्य किया है। 2008 में आपने कॉर्पोरेट करियर को छोड़कर ब्रह्मा कुमारी से जुड़ते हुए अपना जीवन सेवाओं के लिए अर्पित किया है। तब से अब तक आप कई नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता रह चुकी है तथा ब्रह्मा कुमारी के जो डिफरेंट विंग्स है, IT विंग, बिजनेस विंग, यूथ विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, इसमें भी आप प्रमुख वक्ता के रूप में रह चुकी है। मिनिस्ट्रीज, कॉरपोरेट ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल में आपने हजारों लोगों को इंस्पायर किया है। वर्तमान में आप ओआरसी गुरुग्राम में फैकल्टी के रूप में सेवाएं दे रही है। तो मैं ज्यादा समय न लेते ब्रह्मा कुमारी विधात्री बहन जी को अनुरोध करती हूँ कि आप अपने मधुर वचनों से हमें परमात्मा के दिव्य परिचय का रसपान कराइए। रिस्पेक्टेड सिस्टर विधात्री, थैंक यू।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। जैसे अभी हम गीत में सुन रहे थे, मनुष्य की हमेशा से ये एक बहुत बड़ी पहेली रही है जिसका परिणाम हम आज संसार में देख भी रहे हैं कि मनुष्य, हम ये क्लेम भी करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया, मुझे किसने भेजा, मुझे यहाँ क्या करना है, और इसके साथ साथ परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, वो क्या चाहता है, क्यों उसने हमें रचा, ये सारे प्रश्न हमेशा से मानव के मन को एक खोज की ओर लेके जाते रहे हैं। कईयों को फर्क भी नहीं पड़ता, कुछ ऐसे भी हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, या ये कहें पड़ तो रहा है फर्क, लेकिन उन्हें महसूसता नहीं है कि इस चीज को ना जानने से, ये परिचय ना होने से जीवन में अंतर क्या आ रहा है, या ये जान जाने से जीवन में परिवर्तन क्या आ सकता है। एक छोटी सी आपको कहानी से समझाते हैं। एक बार एक राजा था, वो राजा ने अपने राज्य में एक बार ऐलान किया कि फलानी तारीख को इस तिथि पर मैं दान करूंगा सबको। दान की विधि क्या थी कि इस दिन सूर्योदय से ही मेरे राजमहल का एक द्वार खुल जाएगा, जो भी प्रजा वाले आना चाहे राजमहल के अंदर उनको खुली परमिशन है, कोई चेकिंग नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, महल के अंदर आए, और महल के अंदर आने के बाद जिस चीज को वो लेना चाहे बस उस पर अपना हाथ रख दे, वो चीज उनकी हो जाएगी, राजमहल की कोई भी चीज वो ले सकते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो चर्चे शुरू हो गए पहले से ही, राजा की वाहवा, अभी तो वो तिथि आनी बाकी थी लेकिन राजा की वाहवा शुरू हो गई। जैसे ही वो तिथि आई सूर्योदय से लाइन लगना शुरू हो गई। एक एक करके लोग अंदर जाते, सारा राजमहल देखते, जो चीज पसंद आती उस पे हाथ रख देते, सिपाही वो चीज बाइज्जत उस व्यक्ति के घर पहुंचा देते। सुबह से लाइन खत्म ही नहीं हो रही, हर कोई एक एक करके लाइन में जुड़ता जा रहा। जो गेट पे सिपाही थे वो ये उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा वही महल के द्वार के बाहर एक बड़ा सा वृक्ष था उसके चबूतरे पर बैठा हुआ था। सुबह से दोपहर हो गई वो बच्चा वहीं बैठा रहा। एक दो बार लोगों ने उससे पूछा कि आ जाओ हमारे आगे लाइन में। उसको लगा शायद लाइन लंबी देख करके सोच रहा होगा कब खत्म होगी तब लग जाऊंगा, लाइन तो कभी खत्म होने वाली है नहीं। तो कईयों ने उसको ऑफर किया कि आ जाओ हमारे आगे लग जाओ, वो बच्चा नहीं उठा। जब शाम हो गई तो सिपाहियों वो भी देख तो रहे थे, तो सिपाहियों को थोड़ा सा अलग अजीब सा लगा कि ऐसा कैसा बच्चा इतना धैर्यता से सारा दिन बैठा हुआ है, ना उसको भूख लगी ना उसको प्यास लगी, ना वो वॉशरूम के लिए उठा, अब तो शाम हो गई, ना वो खेलने जा रहा है अपने साथियों के साथ, ना वो अंदर आ रहा है ना वो घर जा रहा है, बैठे बैठे एक अजीब सी मुस्कान लेके बैठा हुआ है। तो सिपाहियों को बड़ा अजीब लगा, उनको लगा कि ये बात एक बार राजा को बता देनी चाहिए, ये कोई मायावी बालक लगता, ये कोई साधारण बालक नहीं लगता। तो राजा के पास गए, राजा को बताया कि राजन ऐसा एक बालक है। राजा ने कहा क्या बड़ी बात है, बच्चा ही तो है इतने, नहीं नहीं आपको एक बार मिलना चाहिए राजन, उससे उसकी मुस्कान में बड़ी विचित्रता है, वो कोई साधारण बालक नहीं लगता। तो राजा ने बोला ठीक है उस बच्चे को मेरे पास लेके आओ। राजा के पास बच्चे को लेके गए, राजा ने बच्चे को देखा, बड़ा मासूम सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा। तो राजा ने उससे पूछा कि बेटा आपको मेरे राजमहल से कुछ नहीं चाहिए? कहते चाहिए, तो कहते तो ले लो। कहते कैसे हो, कैसे लूं? कहते मैंने तो बता दिया था, पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो चीज अच्छी लगे उसके ऊपर हाथ रख दो, वो तुम्हारी हो जाएगी। तो बच्चे ने राजा के सर के ऊपर ही हाथ रख दिया। बच्चा कहता कि मैं सुबह से देख रहा हूं लोगों को इतनी भी समझ नहीं आ रही है कि जब राजमहल की कोई भी एक चीज आपकी हो सकती है तो वो एक एक चीज को लेकर के ही खुश हो रही है कि जैसे मुझे राजमहल की चीज मिल गई तो मैं ही राजा बन गया, इतने खुश होकर के जा रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि राजमहल में राजा भी तो है। तो उसने जब राजा के सर पे हाथ रख दिया तो क्या हुआ, जब राजा उसका हो गया तो सब कुछ उसका हो गया। राजमहल की एक चीज तो क्या, राजमहल तो क्या, पूरा राज्य सब कुछ उसका हो गया, वो अधिकारी बन गया। हम भी कहीं ना कहीं ईश्वर से एक 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 चीज लेकर के अपने आप को राजा ही मान बैठते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि जो एक एक चीज देने वाला है क्यों ना वही मेरा हो जाए, क्यों ना उसी को मैं जान लूं, क्यों ना उसी से मैं मिल लूं, क्यों ना उसी का परिचय मुझे मिल जाए। तो आज हम उसका परिचय जानेंगे जो ऑलरेडी हमारा है, हम ऑलरेडी उसके हैं। हम बचपन से गाते आए, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। आखिर कौन सा सुख, गाड़ी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाए, क्या इन सुखों के लिए हमने भगवान को अपना बनाया था या कोई और सुख है? तो जब हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिलेगा तब हमें ये भी परिचय मिलेगा कि परमात्मा से हमें क्या क्या सुख प्राप्त हो सकते हैं और वो माता पिता कैसे हैं। अब परमात्मा के बारे में चर्चाएं कुछ कम नहीं है, युद्ध भी उनके नाम पर, शांति भी उनके नाम पर, ये बड़ी विडंबना है। अगर आज आप देखें संसार के अंदर जितनी शांति की बातें होती हैं वो भी भगवान के नाम पर शांति, और अगर देखा जाए तो वही विरोधाभास, युद्ध भी उन्हीं के नाम पर है। ऐसा क्यों, एक परमात्मा, हम सब कहते हैं गॉड इज वन, ईश्वर एक है, एक के बारे में इतनी अनेक बातें कैसे हो गई? जो कोई तो कहता है कि वो सबसे सर्वोच्च है, तो कोई कहता है कि वो तो हम सब में है, हम सब में तो सर्वोच्च कैसे? कोई कहता है कि भगवान आते हैं, कोई कहता है ऑलरेडी कण कण में है, कोई कहता है कि परमात्मा तो है वो मनुष्य आत्माओं का, प्रकृति का, सबका पिता है, प्रकृति पति है, कोई कहता है प्रकृति ही परमात्मा है, कोई कहता है भगवान दुख हरता सुख करता, दुख हरते हैं सुख देते हैं, तो कोई कहता है सुख दुख सब भगवान का ही प्रसाद है, खा लो। तो इतनी अलग अलग बातें भगवान के बारे में कैसे हो गई? उसका भी कारण है। एक बार एक स्कूल था, दिव्यांग बच्चों का स्कूल था। उस स्कूल में एक सेक्शन था जो नेत्र बाधित, जो आंखों से देख नहीं सकते थे, उन बच्चों का। तो उस क्लास के टीचर ने प्लान किया कि मैं 5-5 बच्चों का ग्रुप लेकर के हर रोज इनको कहीं ना कहीं एजुकेशनल ट्रिप पर इस मास में लेके जाऊंगा, तो 5-5 करके सारे बच्चे पूरे मंथ में इनको कहीं बाहर लेके जाऊंगा। तो जू में जाना निश्चित हुआ। पहले 5 बच्चों का ग्रुप बनाया, जू में लेके गए, बच्चों को बताया आज हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, जू, यहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे पंछी होते हैं, हम उनको देख करके आएंगे। और बच्चे आंखों से तो देख नहीं सकते, तो कैसे देखेंगे? छू करके, महसूस करके। तो बच्चों को लेके गए हाथी के पास और बच्चों को बताया ये आपके सामने हाथी है, देखो अच्छे से हाथी कैसा होता है। तो पहले बच्चे ने हाथी के पांव छुए, जैसे हाथी के पांव छुए तो उसने महसूस किया, उसने चित्र बनाया कि ये हाथी तो बड़ा मजबूत खंबे जैसा है। दूसरा बच्चा जब पहुंचा तो उसने हाथी की पीठ छुई, पीठ छू करके उसको लगा छोटे छोटे हाथ बच्चे के, हाथी की पीठ बड़ी लंबी चौड़ी, जहां जहां हाथ जाए वहां हाथी हाथी, उसको लगा ये तो हाथी तो बड़ी लंबी चौड़ी दीवार जैसा होता है। तीसरे बच्चे के हाथ में हाथी की सूंड आ गई, तो उसने देखा हाथी तो बड़ा फ्लेक्सिबल सा लंबा सा पाइप जैसा होता है। चौथे बच्चे के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई, तो उसने देखा हाथी तो रस्सी जैसा है। पांचवे बच्चे के हाथ में हाथी के कान आ गए, तो उसने देखा हाथी तो हाथ के पंखे जैसा है। अब ये पांचों बच्चे हाथी देखकर आ गए। जब वापस पहुंचे तो छठा बच्चा, जिसका अगले दिन टर्न था, जैसे आप लोग भी रिव्यूज लेते हैं ना कहीं कोई गया तो भाई कैसी जगह थी, क्या था, जाना चाहिए कि नहीं, तो छठा बच्चा भी इंतजार कर रहा था मेरे पांचों दोस्त आएंगे और मैं पूछूंगा क्या देखा। तो जैसे ही उसने पूछा, छठे बच्चे ने आ गए क्या देखा, तो पहला वाला कहता हाँ बड़ा अच्छा था, हाथी देखा। हाथी वो क्या होता है? हाथी तो बहुत मजबूत एकदम खंबे जैसा जानवर होता है। दूसरे ने कहा हाँ मजबूत तो होता है लेकिन खंबे जैसा नहीं, चौड़ा भी बहुत था, दीवार मान लो। तीसरा कहता नहीं नहीं वो तो बड़ा फ्लेक्सिबल सा था, पाइप जैसा। चौथा कहता है फ्लेक्सिबल तो था लेकिन पाइप जितना मोटा नहीं था, रस्सी जैसा था, धागे धागे निकल रहे थे उसमें से। पांचवा कहता है नहीं नहीं मैंने तो दोनों तरफ से देखा, हाथी तो हाथ के पंखे जैसा था। अब छठे बच्चे को लगा कि मेरे सारे दोस्त हाथी देख करके आए और सबका अलग अलग अनुभव है, इसका मतलब हाथी ऐसा चमत्कारी जानवर है जो कभी खंभा बन जाता होगा, कभी दीवार, कभी पाइप, कभी रस्सी, कभी पंखा। ये हाथी तो मैं जरूर देखूंगा क्योंकि कल जब मैं पक्का देखने जाऊंगा तो ये कुछ और बन जाएगा देखने, तो मुझे देखना है हाथी और क्या क्या बन सकता है। तो सारे स्कूल में पूरे कॉरिडोर में घूम घूम कर सब बच्चों को कह रहा हम हाथी देखेंगे, हम हाथी देखेंगे। तो सातवें ने बुला के पूछा भाई हाथी क्यों देखना? अब छठे बच्चे का हाथी, छठा बच्चा कहता हाथी एक ऐसा जानवर है जो बड़ा चमत्कारी है, वो कभी खंभा बन जाता है, कभी दीवार, कभी पाइप, कभी रस्सी, कभी पंखा, और भी बहुत कुछ बन सकता होगा, वो हम कल देखेंगे। अब सातवां थोड़ा सोचने लगा कि एक ही चीज, उसने कहा मैंने कुत्ता देखा है, कुत्ता कुत्ता ही रहता है, बिल्ली बिल्ली ही रहती है, ये हाथी कैसा जानवर है जो कभी खंभा कभी ये। तो उसने बोला अरे तुमको बुद्धू बनाया, हाथी वाथी कुछ नहीं होता, वो कुछ देख के ही नहीं आए, या तो तुमसे छुपा रहे हैं, तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं, हाथी वाथी कुछ नहीं होता, ऐसा थोड़ा ना कोई जानवर होता है जो इतने रूप बदले। अब आप बताइए इन सात बच्चों में से सत्य कौन बोल रहा है, सत्य कौन बोल रहा है? सब लोग सत्य बोल रहे हैं, सब सत्य बोल रहे हैं। कल हमने जाना था सत्य और सही में अंतर होता है। सही आपका अलग मेरा अलग हो सकता है, सत्य मतलब जो व्यक्ति स्थान हालात परिवेश परिस्थिति के अनुसार कभी बदले ना, हमेशा वो वही रहता है, उसको सत्य कहा जाता है। जैसे ईश्वर सत्य कहा जाता है क्योंकि वो कभी बदलते नहीं है। तो सत्य अलग है, सही अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं सही कौन बोल रहा है तो आप कहेंगे सारे, लेकिन सत्य कौन बोल रहा है? सत्य बदल नहीं सकता, सबके लिए अलग अलग नियम नियम है। जो नियम बदल जाए, जो सत्य बदल जाए, वो सत्य क्या रहा? तो सत्य कौन बोल रहा है? बस इसी बात का झगड़ा चल रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पांच बच्चे जो बता रहे हैं, हाथी बता रहे हैं या हाथी के साथ का अपना अनुभव बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अपना अनुभव। गलती क्या कर रहे हैं कि वो अपने ही अनुभव को हाथी मान रहे हैं, और छठा जिसने अभी तक किया ही नहीं है अनुभव, वो उनके अनुभव से अपना ही अनुभव क्रिएट कर रहा है। और क्योंकि सातवें को वो अनुभव जच नहीं रहा तो उसने उस चीज की एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन खड़ा कर लिया, क्योंकि जो उसको उसके बारे में बता रहे हैं उनकी बात उसको जच नहीं रही, सही नहीं लग रही, तो उसने उस चीज की एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन उठा दिया। क्या हमारे पास भी वो नेत्र था जिसके द्वारा हम उस परमात्मा को देख सके? जैसे उन बच्चों के पास वो आंखें नहीं जो हाथी को देख सके, ऐसे क्या हमारे पास वो ज्ञान की चक्षु है जो परमात्मा को देख सके? तो हम भी कहीं ऐसे ही तो नहीं अनुभवों के आधार पे परमात्मा का चित्र बना रहे हैं? अब अपने आप से पूछिए, आप में से कितने, कौन कौन कहते हैं हम पहले पांच बच्चों में से हैं जिसने अनुभव करके एक चित्र बना लिया, और कौन कौन कहते हैं कि हम छठा बच्चा है जिसको अभी तक अनुभव नहीं हुआ लेकिन हमने दूसरों का सुन करके चित्र बना लिया? और कोई सातवें बच्चे भी बैठे होंगे यहाँ पे जिनको किसी का अनुभव समझ नहीं आया, सारी आपस की विपरीत बातें समझ नहीं आई, तो उसने कह दिया होगा शायद कि भगवान है ही नहीं। है तो बताए, है ही नहीं, अगर होता तो ये सब हो रहा होता संसार में? भगवान के नाम पे ही हो रहा होता। तो आप में से कितने मानते हैं हम पहले पांच बच्चों में से हैं? छठा, मेजॉरिटी। सातवां भी कोई है? अच्छा, ईश्वर नहीं है। एक आठवां बच्चा भी था जो कहता है चल के देखते हैं, वो कितने हैं? आठवां बच्चा, कि इतना अंदाजा मत लगाओ, खुद चल के देख लेना अच्छे से, न्यूट्रल माइंड से। तो वास्तव में अभी तक भी ऐसा ही होता आया है। परमात्मा जब अपने आप को ही देखने का चक्षु नहीं था, खुद को भी हम आईने में तत्वों में ही देख रहे थे, पांच तत्वों में ही देख रहे थे, तो परमात्मा को भी देखने का चक्षु कैसे आएगा? तो इसलिए मान लीजिए जिसने भी अभी तक हमें ईश्वर के बारे में बताया, मान लीजिए उनको हम मैसेंजर नाम दें, मैसेंजर वन आए, मैसेंजर वन ने उस समय संसार की हालत को देख करके जो संसार के अंदर उस समय जरूरत थी जिस चीज की, उसी चीज को, क्योंकि भगवान में तो सर्वगुण सब कुछ है, ऐसी कोई चीज नहीं जो उनके पास ना हो, तो जिस चीज की समाज को उस समय जरूरत थी वो चीज भगवान से जोड़ करके उसने परमात्मा का वैसा परिचय दिया। अब मान लीजिए मैसेंजर वन का जो परिचय था वो मैसेज वन, तो कुछ लोगों ने उस चीज को समझा कि हाँ इसकी हमें जरूरत है, तो उन्होंने वो भगवान से उस हिसाब से जुड़ने लग गए, उस अनुभव से जुड़ने लग गए। समय बीता, विश्व के किसी और कोने में कोई दूसरे मैसेंजर आए, वहां कुछ और प्रॉब्लम चल रही थी। वहां देखा गया कि भगवान के नाम पे कर्म से तो डर रहे हैं लोग, लेकिन भगवान से प्यार नहीं है। तो उसने कहना शुरू कर दिया, भाई ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर प्रेम ही है। तो वो मैसेंजर टू ने जो चीज उस समय मिसिंग थी वो बताई, तो वो मैसेज टू बन गया। ऐसे करके फिर थोड़े समय बाद तीसरे मैसेंजर आए, उन्होंने कहा कि भाई भगवान से तो बहुत प्रेम करते हो, लेकिन भगवान के बच्चों से तो प्रेम करो, उनके लिए तो दया रखो। तो वो मैसेंजर थ्री का मैसेज थ्री बन गया। किसी को लगा मैसेज वन वाला गॉड अलग है जो पनिश करेगा, मैसेज टू वाला गॉड अलग होगा जो प्यार करता होगा, मैसेज थ्री वाला गॉड कोई और होगा जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि हम उसको माने ना माने, बस अच्छा कर्म करते चलो, उसी से वो खुश होता है। और किसी को लगा कि ये सारे नाम रूप एक के ही है, तो ये सब कुछ सबको जोड़ दे। अब आप आंखें बंद कीजिए सभी, और बंद आंखों से अपने सामने विजुअलाइज कीजिए कि एक खंबा खड़ा है, उस खंबे के ऊपर एक बहुत ऊंची दीवार है, दीवार के एक तरफ पाइप लटका हुआ है, एक तरफ रस्सी लटकी हुई है, और कहीं पर दीवार पर एक पंखा भी है। क्या आपको ये हाथी लगा? आंखें खोल के बताएं, क्या ये हाथी था? तो सब सबको जोड़ दिया जाए तो भी क्या आप हाथी बना पाए? तो जितना भी अभी तक हमने ईश्वर के बारे में सुना है, हो सकता है उसको जोड़ करके भी हम भगवान तक नहीं पहुंच सके। उन तक पहुंचने के लिए हमें वो दिव्य चक्षु चाहिए जो है ज्ञान का चक्षु, जो कल आपको मिला जब आपने स्वयं को जाना, आत्मा को जाना। जब आत्मा को जाना तो क्या जाना? आत्मा कैसी है, हम कैसे हैं? कैसी है आत्मा? अगर आप अपने आप को वर्णन करना चाहें, अब तक तो हम अपना इस देह का वर्णन करते आए, कहीं भी पूछा गया तो देह का नाम बताया, देह की हाइट बताई, देह का वेट बताया, उसने कहां जन्म लिया वो बताया, किनके द्वारा जन्म लिया वो माता पिता बताए, ये तो देह का परिचय बताया। लेकिन अगर आत्मा का परिचय पूछे तो कल आपने क्या जाना? हाँ जी, कैसी है आत्मा? फोटो निकाले तो, वैसे तो फोटो में आएगी नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा कैमरा निकल आए जो आत्मा का फोटो निकाल सके तो कैसी दिखेगी आत्मा? पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट क्यों कहते हैं? क्यों ये बात जानना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भगवान को भी हम क्या कहते हैं? परम आत्मा। तो जो बातें आत्मा के लिए हमने सुनी वो बातें अगर हमने समझ ली तो आधा काम तो हमारा आसान हो गया परमात्मा को समझने के लिए। अब वो परम क्यों है वो समझना है। परम से जुड़ी हुई बातें अभी समझनी है। तो जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, ऐसे ही परमात्मा भी कैसे होंगे? अगर एक ना आपके बच्चे को लेके आ जाए, किसी का बच्चा यहाँ गुम हो जाए, तो उसका बच्चा किसका बच्चा है ये? क्या बोलेंगे? ये किसी मनुष्य का बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसकी आकृति मनुष्य जैसी है, तो उसके माता पिता की आकृति भी मनुष्य जैसी होगी। कोई बछड़ा आ जाए यहाँ पे, तो बछड़े को देख करके बच्चे को भी पूछते ना, प्राइमरी किंडरगार्टन के बच्चों को ये सिखाया जाता है, चार्ट दिखा देते हैं, इसके माता पिता कौन, बछड़ा दिखाते तो वो क्या बोलता है? काओ। पप्पी के माता पिता कौन, तो वो बताता है डॉग। वो तो बच्चे किंडरगार्टन क्वेश्चन है। अब उसी चित्र में जोड़ लीजिए आत्मा, ये बच्चा है आत्मा, तो इसका पिता कौन, कैसा दिखाई देगा? कैसा? बड़ी आत्मा, बड़ी आत्मा, अखंड ज्योति या पॉइंट ऑफ लाइट? कितने कहते हैं अखंड ज्योति, बड़ी बड़ी लाइट? अच्छा, बस कोई कोई। और कितने कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट? ठीक है, इसको भी समझते हैं। हम कहते हैं महात्मा गांधी या कोई ना कोई महात्मा। तो महात्मा यानी महान आत्मा, तो क्या महान वो अपने साइज में थे? साइज में थे महान, लंबे चौड़े? नहीं, किस चीज में महान थे? सोच में, कर्तव्य में। तो ऐसे ही परम आत्मा का मतलब कोई साइज में बड़े नहीं, लेकिन अपने कर्तव्यों में बड़े। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्मा पॉइंट ही है, ज्योतिर्बिंदु बिंदु ही है। क्यों? कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज को आप तोड़ते चलिए, विनाश करते चलिए, डिस्ट्रॉय करते 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 लास्ट में क्या बचेगा जिसको आप और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? क्या बचेगा? क्या बचेगा? पॉइंट। और किसी भी चीज की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले क्या लगेगा? पॉइंट। पॉइंट का आदि नहीं, इसका मतलब पॉइंट अनादि है, जिसकी अपनी कोई शुरुआत नहीं। जो हर चीज की शुरुआत है उसको क्या कहेंगे? अनादि। उसका कोई आदि नहीं और पॉइंट का कोई अंत नहीं है। पॉइंट के बाद आप उसको और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, पॉइंट अविनाशी है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? अनंत। तो जो अनादि है, जो अनंत है, वही सत्य है, क्योंकि ना वो कभी क्रिएट हुआ है और ना वो कभी डिस्ट्रॉय होगा, इसीलिए वो अविनाशी है। तो कैसा लगेगा सुनने में कि आत्मा तो पॉइंट है लेकिन परमात्मा बड़ा है, यानी कि उसके टुकड़े हो सकते हैं? तो आत्मा तो अविनाशी लेकिन परमात्मा विनाशी। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही पॉइंट, निराकार स्वरूप है और दोनों ही अविनाशी है, अनादि अनंत अविनाशी। अब लाइट ही क्यों? लाइट का मतलब क्या है? लाइट का मतलब ये E=mc² नहीं है। परमात्मा कोई ये ज्योति का बिंदु नहीं है, क्योंकि ये भी फिजिकल लाइट है। आत्मा, तम कहा जाता है अंधकार को। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तम कहा जाता है अंधकार को, और जो अंधकार स्वरूप है ही नहीं, उसकी उल्टा है, प्रकाश स्वरूप है, उसको क्या कहा जाएगा? आत्म। तो आत्मा और परमात्मा दोनों प्रकाश स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है, अंधकार से परे हैं, खुद में ज्योति है। इसीलिए जब किसी के अंदर आत्मा परमात्मा का ज्ञान आ जाता है तो क्या कहते हैं? एनलाइटनमेंट हो गया, एनलाइटेंड सोल। क्यों? क्योंकि उस प्रकाश का ज्ञान आ गया। तो आत्मा की तरह परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। फिर डिफरेंस क्या कि हम आत्मा और वो परमात्मा? क्योंकि हमने कल जाना आत्मा में क्या होता है? मन, बुद्धि और संस्कार। परमात्मा का मतलब परम मन, जिस मन के अंदर कभी कोई निचले स्तर का विचार आ ही नहीं सकता। परम मन, मन की हाईएस्ट क्वालिटी जो सबके लिए कल्याणकारी ही सोच सकती है। परम बुद्धि, बुद्धिवानों की बुद्धि परमात्मा को कहते हैं, जो हम सबको ज्ञान देकर बुद्धि दाता है, जो हम सबके बुद्धि का बुद्धि का काम क्या होता है? डिसीजन लेना। परमात्मा मतलब जिसके डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकते। हे भगवान, तूने ये दुनिया क्यों बनाई, मतलब गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं है। ईश्वर और ईश्वर की रचना दोनों का सत्य ज्ञान मनुष्य को आज काफी हद तक नहीं है। और तीसरा संस्कार, परमात्मा के संस्कार कैसे हैं? वो भी परम, जो आत्मा के सात गुण हमने देखे थे कल, देखे थे ना सात गुण, याद है आपको क्या क्या सात गुण थे? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला बताया था, है ना? KP² LHVP फॉर्मूला याद कर लीजिए, आत्मा के गुणों को याद रखने का फॉर्मूला KP2LHBP या कमल प्रसाद पांडे का लो हाई ब्लड प्रेशर, दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। K का मतलब नॉलेज, ज्ञान, KP2LHBP, K अर्थात नॉलेज, ज्ञान, P2 प्योरिटी और पीस, पवित्रता और शांति, LH लव हैप्पीनेस, BP ब्लिस आनंद और P शक्ति पावर, या कमल प्रसाद पांडे KP2 का लो हाई LHBP ब्लड प्रेशर, आपका नहीं कमल प्रसाद पांडे का। तो ये जो 7 गुण हैं, ये आत्मा के मूल संस्कार हैं। आत्मा ऐसी बनी है, किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन ओरिजिनल संस्कार आत्मा के ये हैं। हमारे आत्मा के क्या, हमारे ओरिजिनल संस्कार ये हैं। तो परमात्मा के संस्कार परम संस्कार है, यानी कि वो इन सभी गुणों का सागर है। उनसे ज्यादा शांति ना किसी के पास हो सकती है, ना कोई दे सकता है। उनसे ज्यादा ज्ञान, उनसे ज्यादा पवित्र, जो पतित पावन है, जो सबको आकर पावन बना सकता है, अपवित्रता उसको कभी टच नहीं कर सकती, इतनी पवित्रता उनके पास है। उनके धरती पर आते ही, अवतार लेते ही धरती पवित्र होना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि भगवान कणकण में है और कचरा कूड़ा भी कणकण में है, ऐसा नहीं। तो परमात्मा पवित्रता का सागर है, पतित पावन है। परमात्मा और अपवित्रता साथ साथ नहीं रह सकती, परमात्मा और अस्वच्छता साथ साथ नहीं रह सकती। ये आएंगे तो वो जाएगी। परमात्मा प्रेम का सागर है, गाते भी हैं हम हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्यों? क्योंकि एक बूंद ही काफी है हमें तृप्त करने के लिए। तो ये परमात्मा की महिमा है, जो किसी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। जैसे हम साइंस में भी पढ़ते हैं, आप सभी ज्ञाता बैठे हैं यहाँ पर, साइंस में होता है कि एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही वो कर्म में आएगी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन क्या जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बनेगी? नहीं, लॉसेस होंगे, हीट लॉस, फ्रिक्शनल लॉस होंगे। अब काइनेटिक एनर्जी उसके बाद फिर रुक गई, तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। अब जब फिर से पोटेंशियल से काइनेटिक में आएगी, तो फिर उतनी ही पोटेंशियल रहेगी या पहले वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगी? हर स्टेप पर, हर कन्वर्जन में लॉस होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। वही एनर्जी है, लेकिन हर स्टेप पर, हर कन्वर्जन में लॉस होता गया, तो एंड में जाकर के वो उतनी नहीं बची जितनी की वो शुरुआत में थी। यही आत्मा के साथ होता है। हर जन्म, पुनर्जन्म में वो आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। हर जन्म में, हर ट्रांसफॉर्मेशन में, हर कन्वर्जन में। और परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं, इसलिए जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल उनका सदा रहता है। परम का अर्थ है ना उनसे बढ़कर कोई, ना उनके बराबर कोई। जब हम लोग एडजेक्टिव्स यूज करते हैं तो गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब एक ही है, होगा वो बेस्ट एक ही होगा। गुड बहुत हो सकते हैं, बेटर भी कई हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट एक ही होगा, फेवरेट एक ही होगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो परमात्मा की जो परम ये शब्द है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसका अर्थ है ना परमात्मा के बराबर में कोई है, ना उनसे ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। किस लिए, क्यों? क्योंकि बाकी सब आत्माएं, एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए उनकी एनर्जी क्षीण होती जाती है। एक परमात्मा ही, एक वही आत्मा ऐसी है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। इसीलिए जब सारी एनर्जीज को फिर से रीफिल करना होता है तो वो एक आत्मा काम आती है। क्या हो जाए अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो फिर वो भी उतनी ना रहे, फिर उसको भी रीफिल करने के लिए कोई और आत्मा चाहिए, फिर जो आत्मा चाहिए वो परमात्मा कही जाएगी। परमात्मा को कहते हैं अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा जन्म ले, आज मैंने जन्म लिया, मैं कितनी अच्छी क्यों ना हो जाऊं, कितनी महान क्यों ना हो जाऊं, क्या मैं अपने माता पिता की माता पिता बन सकती हूं, उनसे बड़ी बन सकती हूं? नहीं ना। तो अपने माता पिता की क्या रहूंगी? बच्ची। माता पिता की बच्ची तो माता पिता के माता पिता की पोती, नाती, उनके माता पिता की परपोती, परना। कितनी जनरेशन से मैं नीचे हो गई, तो मैं परम कहां रही? और परमात्मा को क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा, यानी वो सबके पिता हैं, उनका कोई पिता या माता नहीं हो सकती। वो सबके क्रिएटर हैं, उनको क्रिएट करने वाला कोई नहीं हो सकता, इसलिए उनको, इसीलिए परम पिता, स्वयंभू, शंभू, खुदा, खुद आ, आपको लाने वाला कोई नहीं है, आपको खुद ही आना पड़ेगा। भगवान जो पांचों तत्वों में आता नहीं लेकिन पांचों तत्वों के उपराम उनका मालिक है, भगवान में पांचों तत्व आ जाते हैं। भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर। पांचों तत्वों का जो मालिक है, जो उसके अधीन नहीं होता, हम अपने पांचों तत्वों के अधीन आत्मा हो जाती है क्योंकि शरीर में आ जाती है। तो परमात्मा पांचों तत्वों के अधीन नहीं हो सकता, इसीलिए भगवान है, परम पिता है, उसका कोई पिता नहीं, उसकी कोई मां नहीं, इसीलिए परमात्मा को गॉड कहते हैं। जी का अर्थ है जनरेटर, ओ का अर्थ है ऑपरेटर, जनरेटर स्थापना करने वाला, ऑपरेटर पालना करने वाला, ऑपरेट करने वाला, और डिस्ट्रॉयर जब वो चीज इतनी पुरानी हो जाती है कि अब मरम्मत नहीं हो सकती, बहुत मरम्मत कर ली, तो फिर क्या होता है, इसको हटा के फिर नया जनरेट करो। तो नई जनरेशन के लिए पुराने का, पुराने की सफाई, तो पुराने का को हटाकर नया लाने वाला, परिवर्तन करने वाला। कलयुग के अंत में पुराना, पुराने को खत्म करना नहीं होता, वो अपने आप ही शक्तिहीन खत्म हो ही जाता है, बस सिर्फ उस शक्तिहीन को साफ करके नया लाना होता है। कलयुग को समाप्त जब हो रहा होता है तब सत्युग लाना होता है, जो कार्य परमात्मा इस समय करते हैं। इसीलिए परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा को अकर्ता अभोक्ता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये शरीर नहीं जो वो इस शरीर के द्वारा कर्म करें, और क्योंकि कर्म नहीं करते तो कर्म का फल भी भोगने की कोई बात नहीं आती। अगर एक भी कर्म कर लिया, अगर एक सेकंड का भी जन्म हो गया तो एक सेकंड में भी सांस ली कर्म हो गया, तो फिर भोगना पड़ेगा, फिर भोगने के लिए और जन्म लेना पड़ेगा, तो जन्म मरण के चक्र में फंस जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स का भी लॉ है, लॉ ऑफ एंट्रोपी, जो ये कहता है कि क्लोज्ड सिस्टम की एनर्जी हमेशा घटती जाती है, और अगर उस क्लोज्ड सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाना है तो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो एक तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा जो इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, तभी तो वो सिस्टम की एनर्जी बढ़ाएगा। तो परम आत्मा इस आत्माओं के, प्रकृति के, इस संसार के सिस्टम के अंदर जो आत्माएं बंद गई हैं, उसमें से वो नहीं है, वो एक्सटर्नल सोर्स है जो आते हैं और आकर के इस पूरे सिस्टम की एनर्जी फिर एक बार बढ़ा देते हैं। इसीलिए परमात्मा के लिए कहते हैं अवतरण, हमारा कहते हैं जन्म, पुनर्जन्म, परमात्मा के इस कर्तव्य के लिए उनको कहते हैं अवतरित होते हैं। तो परमात्मा परम इसीलिए है क्योंकि वो सदा ज्योतिर्बिंदु है, कभी जन्म मरण में प्रकृति में नहीं आते, और हर धर्म ने उनके इस ज्योति स्वरूप निराकार स्वरूप को माना है। जैसे हम सनातन पद्धति के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, हम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मानते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, लेकिन सभी देवी देवताओं के बीच में एक ऐसे हैं जिनको हम अजन्मा कहते हैं, निराकार कहते हैं, जिनकी पूजा जब होती है तो कोई मनुष्य आकृति नहीं दी जाती, उनके लिए लिंग बनाया जाता है। और उस लिंग को क्या कहा जाता है? ज्योतिर्लिंग। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, लक्षण, जिसमें पुरुष जैसे लक्षण है वो पुरलिंग, जिसमें स्त्री जैसे लक्षण है वो स्त्रीलिंग, जिसमें ज्योति के लक्षण है वो न पुरलिंग है न स्त्रीलिंग है, वो ज्योतिर्लिंग है। और उस ज्योतिर्लिंग को क्या कहते हैं? शिवलिंग। और उसको ही क्या कहते हैं? शिव को ही क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या कहा गया? गॉड इज लव, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लाइट। इस्लाम धर्म में क्या कहा गया? अल्लाह नूर है। आप यहां देख सकते हैं, नूरे इलाही, अल्लाह नूर है। गुरुवाणी में क्या कहा गया? एक ओंकार, निराकार, सत्य नाम। आप चाहे सत्य नाम कह दीजिए या गॉड इज ट्रुथ कह दीजिए या सत्यम कह दीजिए, भाषा अलग भाव एक। आप चाहे ज्योतिर्लिंग कह दीजिए, चाहे आप निराकार ओंकार कह दीजिए, चाहे आप गॉड इज लाइट कह दीजिए, भाषा अलग भाव एक। कर्म प्रधान जो धर्म है जिसमें भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं, वो लोग भी जब अपने आपको डिवाइन से कनेक्ट करते हैं तो वो लोग भी मेडिटेशन के द्वारा अपने सामने एक प्रकाश की ज्योति रख करके 3 फीट दूरी पर, 3 फीट हाइट पर उनका ध्यान लगाते हैं। अपने उनके भी जो धर्म गुरु थे, उन्होंने भी क्या डिस्क्राइब किया कि एक प्रकाश ने आकर के मुझे परिचय दिया, ज्ञान दिया, इसलिए एनलाइटनमेंट। महावीर जैन, गौतम बुद्ध, उनको क्या कहते हैं? एनलाइटेंड सोल। उन्होंने भी अपने ज्ञान को लाइट से आया हुआ माना, यानी कि परमात्मा जो ज्ञानदाता, उनको लाइट स्वरूप माना। तो हर धर्म के अंदर जो यूनिवर्सल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है, वहां तक जब पहुंचते हैं, जब हम सारे मनुष्य आत्माओं से भी ऊपर, देव आत्माओं से भी ऊपर पहुंचते हैं, देव आत्माओं ने भी शक्ति जब ली, तो वहां पर सुप्रीमेसी का जब भाव आता है तो निराकार आता है। श्री राम ने रामेश्वरम में किसकी आराधना की? शक्ति लेनी थी तो किसके पास गए? उसी सुप्रीम के पास जो निराकार स्वरूप है। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने भी किससे, किसकी वंदना की? उसी निराकार की। दुर्गा जी जो सबको शक्ति देने वाली, जगत अम्बा कहलाई, वो भी क्या कहलाई? शिव शक्ति। गणेश जी जो कि सभी देवताओं के भी पूज्य हैं, वो भी किसकी संतान कहलाए? किनसे वरदान लिया? परमात्मा शिव से। तो शिव परमात्मा, जिनका प्राचीन नाम शिव है। शिव क्यों? क्योंकि मनुष्य का नाम कैसे रखा जाता है? उसके गुणों को देख करके। लेकिन जन्म के समय जो गुण थे उसके आधार पर नाम रख लिया, कर्म के आधार पर जो गुण बन गए कभी कभी वो मैच नहीं करते। एक व्यक्ति था, उसका नाम था छज्जू। उसको अपना नाम पसंद नहीं था, बचपन में तो चल गया छज्जू छज्जू प्यार से सब बुला के। बड़ा हुआ तो उसको लगा ये क्या नाम है छज्जू, मैं कल को नौकरी करने जाऊंगा तो मुझे क्या बुलाएंगे छज्जू, मैं अपना नाम बदल देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है नाम बदलो, क्या नाम रखोगे? तो उसने बोला देखता हूँ औरों के क्या क्या नाम है, जो नाम अच्छा लगेगा वो रख लूंगा। तो वो निकला अपने घर से नाम ढूंढने। एक घर के सामने पहुंचा तो एक महिला धान कूट रही थी, तो उसने पूछा बहन जी आपका नाम क्या है? कहता लक्ष्मी। कहता क्या अजीब बात है, लक्ष्मी नाम और धान कूट रही है, ये नाम ठीक नहीं। थोड़ा आगे गया तो पूछा, तो देखा कि एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, तो पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? कहता मेरा नाम है त्रिलोकीनाथ। कहता त्रिलोकीनाथ और सड़क पे बैठ के भीख मांग रहा है, ये नाम भी ठीक नहीं। थोड़ा आगे गया तो देखा एक अर्थी जा रही थी। पूछा किसकी अर्थी, कौन चल बसा? कहते अमरनाथ। कहते बताओ अमरनाथ और चल बसे, ये नाम भी ठीक नहीं। तो ऐसे घूम घाम के वापस आया तो दोस्त ने पूछा, हाँ छज्जू भाई कोई नाम पसंद आया? तो कहता है लक्ष्मी कूटे धान, त्रिलोकीनाथ मांगे भीख, अमरनाथ चल बसे, मैं छज्जू ही ठीक। तो व्यक्ति का नाम और उसके गुण मैच नहीं करते, लेकिन परमात्मा, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो अव्यक्त है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है, पारलौकिक है, इसलिए उनका नाम उनके गुणों के ऊपर बिल्कुल फिट होता है। अब इस नाम पे ही बड़े झगड़े हैं, मैंने सस्पेंस क्लियर कर दिया है, वैसे लीक कर दिया है, नाम आउट कर दिया है, लेकिन आप खुद सोच के बताएं, ऐसा कौन समझ में आता है जिसको हम हमेशा सभी का सभी से ऊपर सुप्रीम मानते आए हैं, निराकार मानते आए हैं, जिनको क्रिएटर भी कहते हैं, डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, पालना भी सब उनसे लेते हैं, ऐसा कोई नाम याद आता है? गॉड, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, परवरदिगार, वाहेगुरु, मालिक, क्या ये सारे नाम हैं या टाइटल्स हैं, पोजीशन है, क्या कह सकते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ये नाम है या टाइटल है, पोजीशन है? पोजीशन है। पोजीशन होल्डर का तो कोई नाम होगा? होगा। तो ये सारे भगवान, अल्लाह, परवरदिगार, वाहेगुरु, जब हमें व्यक्ति का नाम नहीं पता होता तो कैसे बुलाएंगे? तो पोजीशन से ही बुलाएंगे। तो हर एक ने उस पोजीशन को नाम अपनी भाषा में दे करके पोजीशन से ही याद किया, और जब तक वो भगवान है तब तक पोजीशन चल भी जाएगी। लेकिन अगर मेरा पिता है तो क्या पिता की पोजीशन ही काफी है? नहीं ना। मेरा उनसे संबंध कब जुड़ेगा? जब मैं उनके बारे में सब कुछ जानूं। भगवान मेरे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन क्या मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूं? तो रिलेशन कैसे बनेगा, संबंध कैसे बनेगा? इसलिए क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हम सब अलग अलग भाषाओं में वही बात करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो परमात्मा का प्राचीन नाम शिव कह के बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव के तीन अर्थ हैं। जीरो का इन्वेंशन किसने किया? जीरो, शून्य, या डेसिमल, दशमलव, किसने किया? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट से पहले जीरो नहीं था? था ना। आर्यभट्ट ने उस चिन्ह को शून्य, बड़ा, और दशमलव, छोटा करके कैलकुलेशंस में यूज करना हमें सिखाया। उसके पहले इन दोनों ही आकृतियों को शिव कहा जाता था। शिव का मीनिंग है बिंदी। पुराने जमाने में जब बिजनेस खाता अपना क्लोज करते थे रात को, तो शिव लिखते थे, अर्थात बिंदी। आज भी अगर आपको किसी व्यक्ति को चुप कराना हो, उसकी बात नहीं बोलते, बस बस शिव 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 बोलते हैं ना, मतलब चुप हो जाओ, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, बंद करो। तो शिव का मतलब बिंदी, जो परमात्मा का रूप है। शिव का मतलब है शव का ऑपोजिट, जो कभी शव नहीं बन सकता वो है शिव, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं। और शिव का तीसरा जो शाब्दिक अर्थ है वो है सदा कल्याणकारी। और क्योंकि परमात्मा का वो रूप कांस्टेंट है, वो कभी अपना रूप नहीं बदलते, कर्तव्य बदलते हैं, और कर्तव्य के हिसाब से हमने उनको अलग अलग नाम फिर दे दिए। जितने भी नाथ नाथ वाले मंदिर हैं, नाथ सुप्रीम, उन सब में आप देखिए तो शिवलिंग ही स्थापित है। जितने भी प्राचीन आप सभ्यताएं देख लीजिए, भारत के बाहर चले जाइए, भारत में तो नाथ नाथ, अमरनाथ, महाकालेश्वर ईश्वर या नाथ वाले सब मंदिरों में निराकार की ही प्रतिमा है, उन्हीं का चिन्ह है। केदारनाथ, रामेश्वर, अमरनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, गोपेश्वर, सब जगह। अच्छा, इंडिया के भी बाहर, भारत के भी बाहर चले जाइए, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं उसमें एस्केवेशन के अंदर जो सबसे पुराने उनके वर्शिप मॉडल्स निकलते हैं वो पिंडियां निकलती है, चाहे वो संगे अश्वद हो, चाहे वो रोम के अंदर हो, वैटिकन सिटी के अंदर हो, हर जगह पर प्राचीन से प्राचीन अगर वर्शिप की आकृतियां निकलती हैं तो वो पिंडी रूप में निकलती हैं, क्योंकि निराकार परमात्मा जिसको हर धर्म स्थापकों ने ही बोला, बस वही बात हो गई, मैसेंजर वन का मैसेज वन तो गॉड वन बन गया, फिर मैसेंजर टू ने अलग प्रकार से अलग चीज पर जोर देके बोला तो वो मैसेज टू तो गॉड भी टू सेकंड दूसरा बन गया। तो शिव के तीन अर्थ हैं। तो परमात्मा निराकार स्वरूप, आत्माओं का पिता, इसलिए पिता नहीं कि कहीं हम उनसे निकली हैं, नहीं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना ही आत्मा कभी लीन होकर के नष्ट होती है परमात्मा में, लेकिन पिता क्यों है, क्योंकि पिता से संस्कार मिलते हैं, पिता से विरासत मिलती है। आत्मा की जागीर क्या है, आत्मा के संस्कार जो हमें उस परमात्मा से मिलते हैं। तो क्योंकि हमें परमात्मा की वो जागीर मिलती है, परमात्मा से हमें वो संस्कार मिलते हैं, परमात्मा से हमें वो ज्ञान मिलता है बुद्धि के लिए, तो आत्मा के पास तीन ही चीजें हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, और वो तीनों चीजें परमात्मा हमारी उन्नत करते हैं, इसलिए परमात्मा को हम पिता कहते हैं। तो परमात्मा के लिए ऊंचा तेरा नाम, इतना ऊंचा जो कभी बदलता नहीं, इसीलिए शिव को ही सदाशिव कहा जाता है। तो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। तो परमात्मा का धाम क्या है, परमात्मा इस लोक के वासी नहीं। आप सोच के देखिए, कितने आप में से मानते हैं कि परमात्मा कणकण में है, हम में, आप में, हर जगह भगवान है, कणकण में भगवान है। अब जरा मैं आपसे पूछूं, कणकण कैसा है इस संसार का? अगर शांति का सागर कणकण में है तो क्या कणकण शांति शांत है? अगर प्यार का सागर कणकण में है, हम सब में है, तो क्या हमारे अंदर वो प्रेम सबके लिए है? एक अगरबत्ती भी जल जाती है कमरे में तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है, एक अगरबत्ती में भी वो शक्ति है कि अपने आसपास के वातावरण को अपने जैसा कर ले। ये परमात्मा कैसा कि हर जगह होकर के भी एक भी चीज को अपने जैसा नहीं बना पाया? तो जब ये महिमा सुनते हैं कि भगवान कणकण में है और फिर दुनिया देखते हैं कि ये तो लगती नहीं भगवान जैसी, तो फिर सातवां बच्चा कह देता है भगवान ही नहीं है। पुलिस वाला खड़ा हो और पुलिस वाले के सामने ही चोर चोरी करके ले जाए तो पुलिस वाले पर भरोसा रहेगा आपका कि ऐसी पुलिस किस काम की? तो लोगों ने भी यही सुना, महिमा सुनी और संसार में देखा तो कह दिया ऐसा भगवान किस काम का, भगवान है ही नहीं, भगवान कुछ होते ही नहीं, भगवान कुछ करते ही नहीं। कभी भी जब किसी ने भगवान को याद किया तो क्या कहा, कणकण वाला जाने, ऊपर वाला जाने, क्या कहा, या अंदर वाला जाने, क्या कहा, ऊपर वाला जाने। जितने भी लोगों ने इशारा किया, सबकी उंगली कहाँ रही, ऐसे रही, ऐसे ऐसे कहीं भी रही, कहाँ रही, ऊपर रही, हमेशा ऊपर उंगली दिखाई। तो ऊंचा तेरा धाम, उस धाम को कहते हैं परम धाम। समय कम है, नहीं तो बहुत कारणों से आप कह सकते हैं कि परमात्मा कणकण में नहीं है, फिर भी बता देती हूँ कुछ हमने परमात्मा को कणकण में क्यों कहा। सबसे पहली जो चीज रही, और महात्मा को कणकण में कहने के लिए वो रहा प्रेम। जैसे माँ को अपने बच्चे से इतना प्यार होता है, कहीं भी वो जाती है उसके मन बुद्धि जहन में क्या रहता है, बच्चा कहती है मेरी बच्चा मेरी आंखों का तारा। तो आंखों का तारा मतलब ये तो नहीं कि बच्चा सच में तारा है और आंखों के अंदर है, मेरे दिल का टुकड़ा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लिटरली दिल का टुकड़ा है, नहीं ना। वो एक प्रेम का भाव कि जैसे आंखों की रोशनी आंखों से अलग नहीं, ऐसे मेरा बच्चा भी मुझसे दिल से दूर नहीं। जैसे अगर दिल का टुकड़ा निकल जाए तो दिल रह नहीं सकता जिंदा, ऐसे मेरा बच्चा अगर दूर हो जाए तो मैं रह नहीं सकती। वो भाव था, तो प्रेम का वो भाव जिसके कारण हमने कहा कि भगवान जहां देखूं तू ही तू है, मतलब मैं देखूं कहीं भी याद मैं आपको ही कर रहा हूं। तो उस भावना को बाद में समझ लिया गया, जिसके अंदर वो भावना नहीं थी उसने शब्द पकड़ लिए कि जहां देखूं वहां तू ही तू, मतलब भगवान हर जगह है। दूसरा कारण रहा भय कि भगवान सब देख रहा है, तो लोगों को लगा सब देख रहा है तो सब जगह होगा तभी देख रहा है। अब आप बताइए सूरज है एक ही जगह है या सब जगह है? एक ही जगह है लेकिन उसकी रोशनी सब तरफ है, तो सूरज को सब तरफ रोशनी देने के लिए क्या सब तरफ आना पड़ता है? नहीं। तो जब सूरज एक जगह रह करके सबको रोशनी दे सकता है तो क्या परमात्मा एक जगह रह करके सबको मदद नहीं दे सकता? चलिए सूरज पे भी ना चलिए और लोअर लेवल पे आ जाए, सैटेलाइट। एक सैटेलाइट हर तरफ की पिक्चर, आज आप जीपीएस लगाते हैं, जीपीएस आपको कैसे सब रास्ते दिखा देता है क्योंकि वो देख रहा है। तो क्या वो सब कुछ देखने के लिए सैटेलाइट हर जगह पे है, सर्वव्यापी है? सैटेलाइट कणकण की फोटो आपको दे रही है तो क्या सैटेलाइट कणकण में है? जब मैनमेड चीज एक जगह होकर इतनी शक्ति रखती है कि सब तरफ देख ले, तो मनुष्य को बनाने वाला परमात्मा क्या उसमें इतनी शक्ति भी नहीं होगी कि वे एक जगह रह करके सब कुछ देख ले? उल्टा अगर कोई चीज को आप हर जगह ग्राउंड कर देंगे तो वो सब कुछ नहीं देख पाएगी, उतना ही देख पाएगी जहां वो है। जितने आप ऊपर जाएंगे, अगर आप एक बिल्डिंग के छत पे चल जाएं तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, नीचे का पूरा शहर दिखाई देगा। तो परमात्मा सब कुछ देख पा रहा है क्योंकि वो कणकण में नहीं है, सबसे ऊपर परम धाम में बैठा हुआ है, निवासी है, जहां से सारी सृष्टि का खेल चाहे तो देख सकता है। लेकिन उनको देखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो सृष्टि कि इस पूरे खेल को जानने वाले, उनको पता है कब क्या होगा। और तीसरा कारण जो मुख्य कारण रहा परमात्मा को कणकण में कहने के लिए, अगर मान लीजिए आज आपको यहां से कल सौगात मिली, किसी ने डायरी पेन लिया, किसी ने फोटो फ्रेम लिया, घर जाकर के जब आप उस डायरी को देखेंगे तो आपको कौन याद आएगा? देने वाला, वो जगह या वो व्यक्ति जिसने दिया था। तो देने वाला याद आता है जब उसकी दी चीज को देखते हैं। संसार में हर चीज किसकी दी हुई है? परमात्मा की। तो सब कुछ देख करके कौन याद आया? परमात्मा। तो क्योंकि ये देखा तो भगवान याद, ये देखा तो भगवान याद, तो हमको लगा भगवान ही सब चीजों में है इसलिए वही याद आ रहा है। लेकिन आज ना वो प्रेम रहा, ना वो भय रहा, ना वो आदर रहा, बस शब्द रह गया कि भगवान कणकण में है। तो परमात्मा को ये कहना कि आप सब जगह हो लेकिन आपके गुण कहीं नहीं है, ये महिमा हुई या ग्लानी? टीचर तो सामने बैठा है लेकिन क्लास में डिसिप्लिन नहीं है, ये टीचर की महिमा हुई या ग्लानी? तो इसलिए परमात्मा से इस समय अब हम ज्ञान के आधार पर उनको जानते भी हैं। सच्चा समर्पण जब किसी को जान करके मान करके, भगवान की मानना और भगवान को मानना, भगवान को तो दुनिया मानती है लेकिन भगवान की मानना, ये है समर्पण। कि आप जो हो जैसे हो और जो कहते हो वो हम जीवन में धारण करें। और तब जब परमात्मा से संबंध हमारा जुड़ता है उसको कहते हैं राजयोग। तो ये राजयोग संबंध अब नेक्स्ट लेवल, खुद को जाना, खुदा को जाना, परमात्मा को जाना, अब दोनों चीजों का आपस में संबंध जोड़ क्या है वो हम कल का चैप्टर में समझेंगे। तो जिसको जानने के लिए सारी मानवता जुड़ करके भी अब तक नहीं जान पाई इतने हजारों सालों में, उसको एक घंटे में तो नहीं जान सकते, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन आज आपको मिला, पहचान मिली, पहचान मिल गई, आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हाँ परमात्मा मतलब निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, मुझ आत्मा का पिता। लेकिन पहचान और जानना अभी भी अंतर है। तो पहचान मिलने के बाद आप उस व्यक्ति को जानना शुरू करते हैं, जितना जितना संबंध जुड़ता है उतना उतना व्यक्ति को जान पाते हैं। तो वो यात्रा अभी आपकी बाकी है, कल मॉर्निंग में उसका सेशन होगा, या अगर आप कल तक रुक ही नहीं रहे, वापस जा रहे हैं कहीं आज ही, तो जहां पर भी आप जाएं वहां पे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाकर के आप इस बात को जरूर जानिएगा, क्योंकि पूरे सृष्टि चक्र में ना और कोई समय ऐसा होता है और ना और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है परमात्मा के अलावा जो आपको परमात्मा का परिचय दे। इसीलिए परमात्मा को खुदा कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, क्योंकि उनको जानने वाला उनके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता जब तक वो खुद आकर के अपनी पहचान ना बताए। और ये सृष्टि चक्र का वही समय चल रहा है, अगर ये समय हाथ से गया तो सारी मानवता को खडोल दे, परमात्मा का सत्य परिचय और परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ये समय आपको आप बहुत भाग्य से मिला है, ना यहाँ गवाएं ना वापस जाके गवाएं। हम बहनों की आपसे यही अर्ज है, यही रिकमेंडेशन है और यही रिक्वेस्ट है, जो भाग्य आपके द्वार चल के आया है उसको पूरा प्राप्त करें। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप जब राजयोग को समझेंगे, सेंटर जाएंगे और गहराई से इस चीज को समझेंगे तो आपको प्राप्त होंगे। प्रश्न होना स्वाभाविक है, मैंने कहा हजारों साल भी तपस्या करके जिसका अंत नहीं पा सके, नेति नेति कहते रहे, उसको एक घंटे में वर्णन नहीं किया जा सकता। ओम शांति। अभी हम दो मिनट उस परमात्मा की याद में बैठेंगे और परमात्मा को हम यहाँ प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा का अर्थ होता है जैसे अब कोई बहुत बुजुर्ग सामने आ जाए पिता समान, तो वैसे तो बाबा कई भाषाओं में पिता के लिए ही कहते हैं, लेकिन जब कोई पिता समान भी होता है तो बाबूजी कहते हैं, मतलब बाबा शब्द से ही बाबूजी बना है। दूसरा, बाबा शब्द के अंदर अगर संधि विच्छेद करें तो दो शब्द आते हैं, बा और अब्बा। बा मतलब कई भाषाओं में माँ या बुजुर्ग महिला को बा कहते हैं और अब्बा पिता के लिए कहते हैं। और आपने कहावत सुनी होगी, ये चीज बाबा आदम के जमाने की है। इस बाबा आदम कहावत में आदम मतलब एडम, पहला मनुष्य, और बाबा शब्द आदम से भी पहले आया, यानी कि जो मनुष्य से भी पहले अगर इस सृष्टि में कोई था तो वो शक्ति परमात्मा, वहां बाबा डायरेक्ट परमात्मा के लिए यूज हुआ है। तो हम यहाँ पर बाबा कहते हैं, बाबा का अर्थ है परमात्मा, पिता जो आत्मा के लिए सर्व संबंधी है, माता पिता दोनों है। तो अभी दो मिनट अपने उस पिता से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। महसूस करेंगे कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर के मस्तक के बीचों बीच ज्योतिर्बिंदु आत्मा के समान विराजमान है, जिसकी शक्ति से, जिसके प्रकाश से ये सारा शरीर चल रहा है। स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, और अब अनुभव करेंगे कि ऐसे ही एक दिव्य ज्योतिर्बिंदु इस संसार से बहुत ऊपर स्थित है, जिसके प्रकाश से सारा संसार चल रहा है। वो परम सत्ता, परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप मुझ आत्मा की मात पिता उनकी वो दिव्य किरणें परम शांति परम शक्ति की किरणें मुझ पर पड़ रही जैसे सूर्य की किरणों के नीचे खड़े हो जाएं तो गर्माहट का एहसास होता है, ऐसे ही शांति के सागर सर्वशक्तिवान की किरणों में मैं आत्मा परम शांति परम शक्ति का अनुभव कर रही। जिसे सारी दुनिया में ढूंढा वो इस समय परमात्मा मुझ पर लुटा रहे, उसे आत्मा में बटोर लें, संचित कर ले, अब मैं शांति और शक्ति से भरपूर आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर हर कार्य स्वयं का मालिक बनकर शांति से करने के लिए तैयार हूं। ओम शांति।
शांति। बहुत बहुत धन्यवाद विधात्री बहन जी, आपने परमात्मा से कनेक्शन के साथ अनुभूति कराई।